ओम शांति, ओम शांति। बाबा हम बच्चों को पढ़ाई और याद इन दोनों विषयों पर रोज रोज ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अगर मिस की, एब्सेंट हो गए, तो फिर ऊंच पद तो पा नहीं सकेंगे और याद में नहीं रहेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे तो बहुत सजाएं भी खानी पड़ेगी। इसीलिए पढ़ाई और याद इन पर बाबा बहुत जोर देते हैं। तो पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाबा कहते हैं अलफ और बे, बाबा तो दो अक्षर ही बताते हैं, और याद भी सहज है, लेकिन क्यों ठहरती नहीं याद, क्यों पढ़ाई भूल जाते हैं? क्योंकि माया धूल झोंकती आंखों में, जैसे कोई चलते हैं ना तो आंधी आती है तो जैसे धूल आंखों में चली जाती है, तो आंखों में धूल चली गई तो देखना मुश्किल हो जाता है। तो माया भी धूल डालती आंखों में, और परिणाम क्या होता है, पढ़ाई भी भूल जाती है, याद भी भूल जाती है, और फिर दुनिया में चले जाते हैं। तो आज बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि माया कैसे खींच के ले जाती है दुनिया में। तो बाबा ने अपना मिसाल दिया कि बाबा को, ब्रह्मा बाबा को लौकिक में बहुत वैराग्य था, तो कैसे उस वैराग्य के कारण बाबा को था मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन एक पिक्चर देखी, बायोस्कोप देखा, फिल्म देखी, फिल्म का नाम क्या था याद है आप बाबा की? जी, सौभाग्य सुंदरी, ये बाबा ने कोई फिल्म देखी, एक ही फिल्म देखी, सौभाग्य सुंदरी। और जैसे बाबा ने ये फिल्म देखी तो बाबा को ख्याल आया मैं शादी करूं। तो देखो सिनेमा ने कैसे उनका ध्यान दुनिया की तरफ आकर्षित किया। तो बाबा कहते ये सिनेमा क्या है, सिन की माँ, पाप की माँ। बड़ी दादी जी बहुत इस पर जोर देती थी, सिनेमा, सिन की माँ, बार बार दादी कहती थी। कभी भी उसके आकर्षण में नहीं आना, क्योंकि सिनेमाओं में, फिल्मों में है क्या, काम और क्रोध, यही तो मूल बात है, बाकी क्या कहानियां होगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये पाप का घर है, कभी इस पर आकर्षित नहीं होना। तो ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल देते हैं, और फिर आजकल तो दुनिया में सब कुछ ओपन है। आज बाबा कहते हैं कैसे कैसे पोस्टर्स भी लगाते हैं, फिर लोगों का ध्यान जाता है, बहुत कुछ आज बाबा ने बताया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, ये माया आंखों में धूल झोंकती है, तो कैसे इनसे बच के रहो। आजकल तो घर घर में फिल्म है, आपके मोबाइल में भी फिल्म आती है, तो सारा दिन कई लोग तो बस फिल्म ही देखते रहते हैं, दुनिया में तो क्या नहीं होता, अपनी आंखें ही खराब करते हैं, और रेडिएशन तो कितना चढ़ता है, वातावरण भी बिगाड़ देते हैं, फिर क्रोधवश क्या क्या करते रहते हैं। तो आज बाबा ने इस पर हम बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाया, और याद भी बाबा कहते सिंपल है, बाबा कोई मुश्किल काम तो देते नहीं है। अगर ये भी याद किया, शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से पढ़ाई मिलती है, सतगुरु से हम पावन बनते हैं, घर ले जाते हैं, बाबा का कोई बाप नहीं है, उनका कोई टीचर नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं, ये भी अगर याद किया ना, ये भी बाबा की याद है। ऐसे नहीं कि बस वो बीज रूप की स्थिति बस बन जाए, वो होती नहीं तो समझते मैं, मेरी याद तो ठहरती नहीं है। तो आज बाबा ने बहुत सरल भी कर दिया है। तो सुनते बाबा के माँ वाक्य 14/6/2024 है। मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा क्या है, बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मन मना भव है। प्रश्न है, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? माया की धूल आंखों में पड़ी माना बुद्धि में एंटर किया माया ने, तो बाबा कहे तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। माया ने गफलत कराई, धूल झोंक अंदर डाल दी आंखों में, तो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा को बड़ा अफसोस होता है, है मेरे बच्चे और मैं पढ़ा रहा हूँ टीचर बन के, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ही छोड़ देते हैं। ये भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, ज्ञान का मनन चिंतन करके खुशी में नाचते रहे, ऐसी नॉलेज है। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वो पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। अब एब्सेंट होते जाएंगे होते जाएंगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स का मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है, या तो बेसमझ होगा या तो चलो समझा भी है तो कम समझा है, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है। कोई बहुत समझदार बनते हैं, बच्चे जानते हैं ये बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भले तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो ये हमारा बाबा, हाँ शिव बाबा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो स्टूडेंट की बुद्धि में तो ये होना चाहिए ना, हम सब स्टूडेंट्स हैं और हमारी बुद्धि में ये ज्ञान, बाबा कहते रमण होना चाहिए, आप बाबा कहते टपकना चाहिए सदा। तो बेहद की ये शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, तो स्टूडेंट की बुद्धि में तो ये होना चाहिए ना, फिर साथ भी जरूर ले जाएंगे। टीचर है फिर सतगुरु भी है तो साथ भी जरूर ले जाएंगे। तो बाप जानते हैं ये पुरानी छी छी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है, इस गंदी दुनिया में बच्चों को रहने नहीं देना है, लेके जाना है बच्चों को। कहाँ ले जाना है? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं, बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा, बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो बच्चों को क्या अंदर में आता होगा कि हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रोज पढ़ते हैं, ये शिक्षा खुटती नहीं है, इतनी बेहद की है। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। सबको याद है ना, बाबा हमको इस छीछी दुनिया से वापस ले जाएंगे। तो ये भी अंदर में याद करने से ही मन मनाभाव है। ये भी अगर याद करो कि बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु, अभी सतगुरु रूप में हमें पावन बना के घर ले जाएंगे, बाबा कहते ये भी याद है। याद कोई एक जगह बैठ करके खाली बिंदु है इस रूप से ही नहीं याद करना है, लेकिन ये मनन चिंतन ये भी याद का ही स्वरूप है। ये भी अंदर में याद करने से मन मनाभाव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। शिव बाबा वंडरफुल है और स्वर्ग भी वंडरफुल है, तो ये वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर को, टीचर तो बाद में मिलता है। हर एक व्यक्ति को, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर टीचर के पास जाता है, पहले तो बाप मिलता है ना, तो टीचर तो बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। ये सब युक्तियां हैं बाबा को याद करने की, कैसे बाबा को बाप टीचर सतगुरु रूप में याद करो। माम एकम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। आप पूछो ना उनसे कि ये भक्ति कब से आप करते आए हैं, तो कब से ये चलती चली है भक्ति का, परंपरा से, सब कुछ परंपरा से, शास्त्र भी कब से बने परंपरा से, तो उनको पता तो है नहीं, तो इसीलिए परंपरा कहते हैं। तो समझते हैं परंपरा से करते आए हैं, शास्त्र कब से सुने हैं तो भी कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, सत्युग में तो शास्त्र होते ही नहीं है, तो परंपरा कैसे होगा। ये तो द्वापर में भी शुरू में थोड़ी होंगे, तो बाद में तो लिखे गए होंगे, फिर पढ़ते होंगे, तो बाबा कहते परंपरा कैसे हुआ। सत्युग में तो शास्त्र होते ही नहीं है, तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। किस बात का वंडर, कि बाप बिगर कोई भी ये बातें समझा नहीं सकते हैं। न शास्त्र परंपरा है और न ही ये भक्ति परंपरा है। पता है हमें ये किसने बताया, हमें भगवान ने बताया, तो भगवान के बिना ये कोई बातें समझा ही नहीं सकता। ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये तो हमारा बाबा है। ये कौन है शिव बाबा, हमारा बाबा है, पिता है। उनका कोई माँ बाप है नहीं, शिव बाबा का कोई माँ बाप नहीं है। हा? पहले ये पहेली पूछते थे, ऐसा कौन जिनका कोई माँ बाप नहीं, ऐसा कौन जिनका एक बाप है पर माँ नहीं, ऐसा कौन जिनका बाप भी है माँ भी, ऐसे तो प्रश्न करते तो ये सब जवाब मिलते हैं। तो बाबा कहते ये हमारा बाबा है, इनका कोई माँ बाप है नहीं। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। किसने पैदा किया शिव बाबा को, किसी ने नहीं पैदा किया। इसीलिए शिव को क्या कहते हैं, शंभु। शंभु माना स्वयंभू, स्वयंभू है, जिसका कोई रचयिता नहीं है। तो शिव बाबा किसका बच्चा कोई कह न सके। ये बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मन मना भव है। टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। ऐसा कौन सा बाप है जिसका कोई बाप नहीं है, कौन सा ऐसा टीचर है जिसका कोई टीचर नहीं, कौन सा ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं। एक परमात्मा ही है। तो परंतु खुद कहीं भी पढ़ा नहीं है, पर वो पढ़ाते हैं। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं है, वो नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कोई के उनके पास कैसे आया ये नॉलेज अगर पढ़ा नहीं है तो, परंतु वो बीज रूप है ना, तो बीज में तो पूरे झाड़ का ज्ञान होता ही है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य होने कारण सब कुछ सुनाते हैं, कहते हैं बच्चों मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। आदि से लेकर इस समय तक, फिर बाबा से बच्चे पूछे बाबा आगे क्या होगा, कैसे सत्युग आएगा, ये कैसे होगा, हाँ कई पहेलियां हैं। तो बाबा कहते वेट एंड सी, सब कुछ थोड़ी बताना है, अंत में सब पता चल जाएगा। तो मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, अभी नहीं बताएंगे अंत में, वो सस्पेंस बाबा ने रखा है। अंत के लिए बाबा कहते हैं पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे, बाबा को कहने की दरकार नहीं होगी, तुम ही समझ जाएंगे कि अभी अंत आ रहा है। अभी तक तो पढ़ाई चल रही है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंत आ रहा है, ये बाबा कहते हैं अंत में पता चल जाएगा, अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबर वार पहुंच जाएंगे, अंत आता आएगा तो उस समय सब समझ भी जाएंगे और कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त करते जाएंगे। तो कर्मातीत अवस्था को भी नंबर वार पहुंच जाएंगे, तो बाबा कहे तुम आसार भी देखेंगे, फिर बाबा से पूछने की दरकार ही नहीं होगी, खुद ही समझ जाएंगे कि अभी अंत नजदीक है। आसार भी देखेंगे, निशानियां भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, ये अनेक बार देखा है, अनेक बार हर कल्प में पुरानी दुनिया का विनाश देखा है और देखते रहेंगे, हर कल्प कल्प विनाश देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे कल्प पहले पढ़े थे, कुछ भी नया नहीं है। राज्य लिया फिर गंवाया, फिर अब ले रहे हैं, बाप फिर से पढ़ा रहे हैं, कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे, हाँ झूठ झूठ नहीं है, हम झूठ झूठ नहीं बोलते, शिव बाबा कहते सच सच सुनाते हैं कि सच सच तुम विश्व के मालिक थे। फिर बाबा आकर हमको वो ज्ञान दे रहे हैं, कैसे फिर से विश्व का मालिक बनो, बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए, कि बाबा सच सच हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, ऐसा विचार सागर मंथन सारा दिन चलना चाहिए, ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, हाँ ये बुद्धि में चलना चाहिए। टीचर को कब भूलेंगे, क्या कैसे भूल सकते हमको कौन पढ़ा रहा है, तो टीचर को कब भूलेंगे क्या। टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं ना, कोई कोई बच्चों से, अभी बाबा हाँ बच्चों पर आए, कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, कैसे भुला देती है माया, बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है, भूल जाते हैं कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई ही छीन देते हैं, छोड़ देते हैं बच्चे, छोड़ देते पढ़ाई, धूल डाल दी माया ने आंखों में, देखना ही बंद हो गया, तो भगवान पढ़ा रहे तो देख ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते पढ़ाई छोड़ देते हैं, भगवान पढ़ाते हैं ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा को भी आश्चर्य लगता है, भगवान पढ़ाते और ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं, कौन छोड़ते हैं, बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे कहला करके फिर बाबा को छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कितना आश्चर्य लगता है बाबा को। सो भी कौन छोड़ते हैं, बाप के बच्चे, तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। नई बात भी नहीं है, कल्प कल्प ये नॉलेज दिए। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो, इनका बाबा तो कोई है नहीं। हाँ, शिव बाबा का तो कोई बाबा है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना, जिसका कोई बाबा नहीं, कोई बाप नहीं, वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है तो बताओ। अब ये शिव बाबा कह रहे हैं मेरा कोई बाबा हो तो बताओ। शिव बाबा किसका बच्चा है बताए, कोई शिव बाबा किसका बच्चा है। हाँ, तो इस पर मुझे एक हंसी की बात याद आई। मोहिनी बहन अपना अनुभव सुनाती थी। छोटी थी जब बाबा के पास आई, बाबा से बहुत लाड प्यार मिला। तो जब तो बाबा को कहती है, हाँ कहा, तो वैसे तो गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो वो क्या भूल गई, तुम मात पिता हम बालक तेरे। उसने क्या बोल दिया, हम मात पिता तुम बालक मेरे। तो सब हंसने लगे। हाँ, बाबा ने उनको कहा सुनाओ क्लास में, तो हम मात पिता तुम बालक तेरे। तो सब हंसने लगे। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ठीक कह रही है, ठीक कह रही है, हम मात पिता तुम बालक मेरे। तो सचमुच है ना, तो हम शिव बाबा हमारा बालक भी है ना, तो हम सब शिव बाबा को बालक मानते, नहीं मानते शिव बाबा को बालक। हाँ बच्ची तुम ठीक बोलती हो। फिर वही वही बोले, फिर बाबा ने करेक्ट किया, नहीं बाबा, नहीं बच्ची, हम तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बच्ची थी ना उस समय, उसको समझ नहीं आई, बस हम मात पिता तुम बालक मेरे। तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं बताओ शिव बाबा का कोई बच्चा है। ये शिव बाबा किसका बच्चा है बताओ। ये पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकते, और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। तुम ये भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। याद नहीं करेंगे, पावन नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है, वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। अभी तो गर्भ जेल की सजाएं हैं, फिर जन्म लेना पड़ेगा, सजाएं खाएंगे, फिर धर्मराजपुरी की सजाएं तो और है ना, वहां तो ट्रिब्यूनल बैठता है, कई जजेस बैठते हैं, और खास बाबा के बच्चों के लिए तो कितने जजेस बैठेंगे। सब दादियां हमारी होंगी ना, और नवरत्न तो होंगे ट्राइब्यूनल में, जजों की लाइन होगी। तो बाबा फिर वो डिसाइड करेंगे क्या सजा उनको मिले। तो बाबा कहते हैं हाँ, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है, वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है धर्मराजपुरी में। सब साक्षात्कार होते हैं, बिगर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। जब धर्मराजपुरी में जाएंगे, सजाएं खाने से पहले साक्षात्कार होगा कि ये हमने पाप किए, वो दृश्य हमारे सामने आएंगे। बिगर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। वैसे भी कोर्ट में भी जब सजा देने का जज का ऐलान होता है तो पहले सारी बातें बताता है, सब कुछ, जो भी गवाह है या जो कुछ भी है वो सब बताता रहता है, बताता रहता है। और वो जो मुजरिम होता है जिसको सजा खानी है, वो धीरे धीरे उसका सिर नीचे हो जाता है, क्योंकि ये सब राइट है, इसने ये भूले की है, ये पाप किए हैं, तो अपराध किए हैं, तो उसका सिर नीचे होता जाता है, वो विरोध नहीं कर सकता क्योंकि बात तो सही है। तो ऐसे ही नहीं सजा मिलेगी उसको। तो बिगर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। मूझ पड़े कि ये सजा हमको क्यों मिलती है, हमने क्या पाप किया, क्या गुनाह किया जो हमको फांसी की सजा मिलेगी या उम्र कैद मिलेगी, मैंने क्या किया। इसलिए सब बताते हैं उनको। बाप को मालूम रहता है कि इसने ये पाप किया है, ये भूल की है, सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है, धर्मराज की सजा जब मिलती है तो ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है। ज्यादा समय नहीं लगता सजाओं का, लेकिन ऐसे लगता है पता नहीं कितने जन्मों की सजाएं खा रहे हैं। वो जैसे सब जन्मों की इज्जत गई, 63 जन्मों का पाप वो सब सामने आएंगे, तो जैसे सब जन्मों की इज्जत गई है ना, इज्जत गई ना उसकी जिसने इतने पाप किया, और सब वर्णन होते हैं सबको पता चल जाता है, तो उसकी इज्जत तो खत्म हो गई ना। तो जैसे सब जन्मों की इज्जत गई, तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है, देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते, कैसे छोटे छोटे पाप बनते हैं ना, किसको दुख भी दिया ये भी तो पाप तो बनेगा ना, हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, बहुत गुलगुल बनना है, ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है, ये पढ़ाई का सार तुम्हारे साथ चलेगा, जो सतयुग में वो दैवी गुणों में बदल जाएगा, ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है, पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, बाप की ये नॉलेज न्यारी और सत्य है, न्यारी और सत्य है, न्यारी भी है प्यारी भी है और सत्य भी है, और ये है, ये क्या है, ये है पांडव गवर्नमेंट गुप्त, किसको पता थोड़ी कि हमारी भी ये गवर्नमेंट है पांडव गवर्नमेंट, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते हैं, ये पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है, बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं, हाँ, पर फिर बाबा के देखते कि माया सुन रही है, क्योंकि माया तो तैयार बैठी है पढ़ाई को छुड़ाने लिए, तो कभी छोड़ना नहीं पर माया छुड़ा देती है, बाप कहते ऐसे मत करो, हाँ कुछ होता है ना, पिता देखता है बच्चा ठीक काम नहीं करता, बेटा ऐसे मत करो, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे ऐसे मत करो, माया हाँ तुमको छुड़ा न दे पढ़ाई, बाप कहते ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं, बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है ये कितना दिन एब्सेंट रहा, पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ी मुरली नहीं सुनी तो बाबा की याद भी कहाँ ठहरेगी, तो फिर बाबा कहते बाप को भी भूल जाते हैं, वास्तव में ये भूलने की तो चीज है ही नहीं, शिव बाबा को भूलने की तो चीज है ही नहीं, हर वक्त याद रहे बाबा की, ये तो वंडरफुल बाप है, समझाते भी हैं जैसे ये खेल है, अब ये खेल क्या समझाते हैं, खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, कोई पिक्चर देख करके आए तो और उनसे पूछा जाए ये फिल्म की कहानी सुनाओ तो फटाफट कहानी सुना देंगे, ये कहानी बोलती थोड़ी है जो भी पिक्चर देखकर आते हैं, तो ये भी एक खेल है ना, ड्रामा संसार का भी खेल है, हम इसको कैसे भूल सकते हैं कि हमने इसमें पार्ट बजाया, तो बाबा कहते हैं खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, वो कभी भूलती नहीं है, अब ये अपना अनुभव भी सुनाते, बाबा ने भी एक फिल्म देखी थी, ये अनुभव सुनाते हैं, छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे बाबा को, क्योंकि गांव में पला तो वहां तो गांव में तो क्या था, कुछ भी नहीं था, तो वैरागी ख्यालात रहते थे, कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है, बहुत दुख है कहता था बाबा, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, वो बैंक में रखूंगा 10,000, उस समय 10,000 भी बहुत बड़ी चीज थी, तो बैंक में रख दूंगा फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा और वो ब्याज से मैं चलूंगा, हाँ मुझे और धंधा वंदा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना ही बस है, स्वतंत्र रहेंगे, घर बार संभालना तो मुसीबत है, जैसे बाबा कहते थे। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर एक दिन बायोस्कोप देखा, एक पिक्चर देखी सौभाग्य सुंदरी, उस समय निकली होगी कोई, हाँ तो बहुत सुंदर उसमें खूबसूरत हीरोइन होगी, तो बाबा ने देख ली, बस वैराग्य की सब बातें टूट गई, सब वैराग्य तो ऐसी मैं भी ऐसी सुंदरी से शादी करूं, बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, ये करेंगे, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, बस एक ही थप्पड़, कला काया चट कर दी माया ने। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे ये तो दुनिया ही दोजक है, दोजक माना नर्क, दोजक और बहिष्ट, बहिष्ट माना स्वर्ग। तो बच्चे ये दुनिया ही दोजक है, और उसमें फिर ये नाटक यानी सिनेमा वो भी दोजक ही है ना, सिन की माँ, पाप की माँ, ये दोजक है। ये देखने से ही सब की वृत्तियां खराब हो जाती है। अखबारें पढ़ते हैं, अब अखबारों में भी क्या क्या आता है ना, उसमें भी अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं, अच्छी अच्छी कोई फिल्म एक्ट्रेस होगी या कोई सुंदर स्त्रियां होगी, उनके चित्र देखते हैं, तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है, आकर्षित हो जाती है आंखें उस तरफ, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है। तो बुद्धि में आया ना, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है, ये सोचा तो ये भी जैसे बुद्धि में आ गया, उस तरफ आकर्षित हुए। वास्तव में ये ख्याल भी नहीं चलना चाहिए, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है। हाँ, बाबा कहते देह को देखो ही नहीं, परंतु इस देह में जो या मस्तक पर आत्मा विराजमान है, बस उस आत्मा को देखो, देह को देखो ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये ख्याल भी चलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ये तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल माँ में कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो, अखबार भी पढ़ते हैं तो अखबारों में भी कितने कैसे कैसे गंदे चित्र भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं अखबार भी किस लिए पढ़ो, तो ये ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो, ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। क्योंकि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब मन में तो घर कर लेता है ना, तो ऐसा देखे ही क्यों जो मन में फिर विचार चले। तो बाबा कहते हैं ये तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल माँ में कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो, ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। ये जो कुछ देखते हो ये तो कब्र दाखिल होना है। और आजकल की जो युवा पीढ़ी तो बात मत पूछो, आजकल क्या क्या आपके मोबाइल में ही सब कुछ आता है, सारी दुनिया उसमें है, और वो उस देखते रहते हैं। तो बाबा कहते ये जो कुछ देखते हैं ये तो कब्र दाखिल होना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद नहीं करो, इनसे ममत्व मिटा दो। ये सब शरीर तो पुराने छीछी है, भल आत्मा शुद्ध बनती है, आत्मा तो हमारी चलो शुद्ध बन रही है, परंतु शरीर तो छीछी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना है, शरीर जो छीछी है उस तरफ ध्यान क्या देना है, एक बाप को ही देखना है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। अब इस एक लाइन में सब कुछ आ गया, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी नहीं कर सके, भगवान ही हमको कह सकते हैं और वही हमको पुरुषार्थ कराते हैं विश्व का मालिक बनाने का, बाकी और तो कोई कोशिश भी नहीं करेगा, कोई दूसरा तो ट्राई भी कर न सके, कोई की भी बुद्धि में आ न सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है और तुम्हारी फिर है, उनकी ये साइंस की बुद्धि बहुत चलती है और तुम्हारी है साइलेंस, पर साइलेंस की जीत होगी आखिर साइंस पर ना, ये सब साइलेंस के साधन, साइंस के साधन सब खत्म हो जाने हैं। फिर है बाबा कहते तुम्हारी फिर है साइलेंस, सब चाहते भी हैं हम मुक्ति पावे, तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की। हाँ कह समझते ना कि मुक्ति में तो जाएंगे ही, उसके लिए थोड़ी हम पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु जीवन मुक्ति के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, एम है जीवन मुक्ति की। ये भी बाप ने समझाया है, गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते हैं, तुम्हें ग्रस्त में रह पवित्र बनना है, राजाई लेना है, भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है, मानो आधा कल्प टाइम वेस्ट ही किया, अभी समझते हो हमने कितनी भूले की है। भक्ति भी करते रहे, फिर माया में फंसते भी रहे, फिर क्षमा भी मांगते रहे, पाप भी करते रहे, है ना, वो आरती में आता है विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो एक तरफ भगवान को कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो, और फिर खुद के लिए क्या कहते हैं विषय विकार करो पाप करो, भगवान को कहते हरो। तो हम करते रहते हैं, वो हरता रहे, भगवान को यही काम दिया है कि हम गंदगी करते रहे, और माँ बाप को कहें कि तुम गंदगी साफ करो, माँ बाप कहेंगे तुम करो ना, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं भूले, अभी समझते हो हमने कितनी भूले की है, भूले करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है ये तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इस नॉलेज से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है, उनको कोई बाप नहीं है। फिर वो पहली पॉइंट नशा छोड़ाओ, हमारा वो बाबा है जिसका कोई बाप नहीं है, वो टीचर है उनका कोई टीचर नहीं है। कहेंगे अच्छा कहाँ से सीखा, ऐसे कैसे हो सकता है कि उनका कोई टीचर ही ना हो, कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं, अब ब्रह्मा बाबा के लिए भी क्या समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं ये तो कोई गुरु से सीखा होगा, ये जो ज्ञान दे रहा है समझते ब्रह्मा बाबा ही दे रहा है ना, ये किसी गुरु से सीखा होगा ये ज्ञान। तो गुरु के और भी तो शिष्य होंगे ना, केवल एक ही शिष्य था क्या उस गुरु को जो यही सीखा, तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं, आगा खान के देखो कितने शिष्य है। उस समय आगा खान का नाम बहुत मशहूर था, कैसे उनको हीरो में तोला था। आगा खान के देखो कितने शिष्य हैं, गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, हाँ वो भावना रहती है, उनको तो हीरो में वजन करते हैं आगा खान को किया। तुम ऐसे सतगुरु को किसने वजन करेंगे? अब हम शिव बाबा को किसने वजन करेंगे? शिव बाबा के लिए तुमको बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, पर किसने वजन करेंगे, किसके साथ था वजन करेंगे? ये तो बेहद का सतगुरु है, इनका वजन कितना है? शिव बाबा का वजन कितना है? एक हीरा भी नहीं डाल सकते, एक हीरा अगर कोई डालो सोचे शिव बाबा का ये वजन है, तो एक हीरा भी नहीं डाल सकते, हाँ क्या कोई वजन नहीं है शिव बाबा का। तो ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है, ये तो महीन बात हुई ना। भल ये तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु ये थोड़ी समझते हैं, भगवान को याद करते हे ईश्वर कहते हैं, परंतु क्या नहीं समझते कि वो हमारा बाप टीचर सतगुरु भी है। ये तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो कितना साधारण रीति से बैठे रहते हैं, ये ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं, हिस्ट्री हॉल में बाबा की संदली है ना जिस पर बाबा बैठते थे, तो बाबा कहते हैं ये ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सके। अब बाबा नीचे बैठ करके मुरली चलाए तो जब पीछे वाले तो बाबा को देख भी नहीं सके, और बाबा भी पीछे वालों को देख नहीं सके, इसीलिए थोड़ा ऊंचा देख बैठते हैं ताकि सबको देख सके और सब बाबा को देख सके। तो बाबा कहते हैं ये ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सके, बच्चों पर प्यार तो रहता है ना, सबका मुखड़ा देखे। दादी जानकी को बहुत ख्याल आता था, जब बिठाती थी ना हिस्ट्री हॉल में, मिलती थी खास डबल विदेशियों के लिए, कहती थी हिस्ट्री हॉल में बुलाओ बुलाओ, इतने विदेशी बाबा दादी हिस्ट्री हॉल में कैसे मिलेंगे, मेडिटेशन हॉल में चलो, नहीं 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 नीचे बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो दादी तो बैठती थी, फिर देखती थी ये सब बैठे हैं, सबका मुखड़ा दिखाई देता है ना, किसी का मुखड़ा नहीं दिखाई देता, कहती हटो छोटो मुखड़ा देखो तुम्हारा। हाँ दादी ऐसे करती थी। तो बाबा कहते हैं तो सबका मुखड़ा देख सके, बच्चों पर प्यार तो रहता है ना, इन मददगार बच्चों बगैर स्थापना थोड़ी करेंगे हम। बाबा के मददगार बच्चे, कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों के लिए, हाँ इनके बगैर स्थापना कैसे होगी। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंचते ऊंच पद लेगा। हाँ जास्ती जास्ती मदद करने वाला कोई बच्चा होगा तो जरूर जास्ती प्यार करेगा बाप। ये अच्छा धन कमाता है, नौकरी अच्छी है तो हाँ पिता को भी मदद करता है तो बाप उसको बहुत प्यार करेगा ना। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंचते ऊंच पद लेगा, उस पर प्यार भी जाता है पिता का। तो बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं बाप, आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ, शिव बाबा भी खुश होते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं कल्प कल्प बाप को मिलकर। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं बाबा, बच्चे प्यारे लगते हैं बाबा को। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है बाबा के साथ, हर कल्प ऐसे ही बाबा हमको प्यार करेंगे। तो कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है, भल कहां भी बैठे रहो बुद्धि में बाप की याद रहे। यह बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं है, इनका कोई टीचर नहीं है, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। सत्युग में तो कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बस सारा दिन बाप की सर्विस करें। हाँ ऐसी खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए, सारा दिन बाप की सर्विस करें, ऐसे बाप का परिचय दें। बाप से ये वर्षा मिलता है, बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। ये अंदर में सोचो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे, बाप हमको राजयोग सिखलाते फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। सारा चक्र भी बुद्धि में है, ऐसा चक्र तो कोई बना न सके। ये सृष्टि चक्र जो बाबा ने बनवाया, बाबा कहते ऐसा और कोई नहीं बनवा सकता है, ऐसा कोई बना न सके। अर्थ का तो किसको पता ही नहीं है। तुम अभी समझते हो बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है और बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे तो क्या होगा, किसी को ऐसे समझाओ कि वो हमारा बाप कैसे है, टीचर कैसे, सद्गुरु कैसे, ये समझाएंगे और तो फिर बाबा कहते कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेगा। अब सर्वव्यापी है तो वो बाप कैसे हुआ, टीचर कैसे होगा, सद्गुरु कैसे होगा, तो फिर सर्वव्यापी कोई नहीं कहेगा। वो बाप है टीचर है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे पढ़ाई को भूलो मत, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है, इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। वो परम गुरु सब गुरुओं को भी ले जाएंगे, सबका उद्धार करते हैं ना। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो ये बेहद का खेल है, हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं, हम ही मालिक थे, वैकुंठ तो होकर गया है ना, फिर जरूर होगा। जो चीज पास्ट हो गई वो फिर फ्यूचर में आएगी, जो बीत गया वो फिर भविष्य में आएगा, फिर जरूर वैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। तो चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो अब हमारी लात नर्क के तरफ है और मुंह स्वर्ग के तरफ है। श्री कृष्ण का चित्र नर्क के तरफ लात है और हथेली पर स्वर्ग है। अब हमारी लात नर्क तरफ है और मुंह स्वर्ग के तरफ है, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरण करना चाहिए। होता है सिमरण ऐसे सारा दिन इन बातों का, बाबा कितना ध्यान खिंचवाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों तरफ जरा भी ध्यान न जाए। छीछी शरीर है तो छीछी चीज पर ध्यान थोड़ी जाता है। दूसरा, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वो अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा, कल भी शांति की शक्ति पर बाबा ने बताया, तो शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। प्रयोग करो शांति की शक्ति का। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। क्या है शांति की शक्ति के साधन, कल बताया ना, दृष्टि, हमारी वृत्ति, वाइब्रेशन, शुभावना, शुभकामना। तो ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे कैसे करेंगे ये, जैसे दीपक दीपक को जगा देता है। एक दीपक रखो, फिर उसके बाजू में बुझा हुआ दीपक है, वो दीपक से दीपक को जगा सकते हैं, तो ये भावनाओं से उनकी भावनाओं को भी जगा सकते हैं। तो जैसे दीपक 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 को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सचमुच हमने देखा है, केवल कहीं भी कोई सेवार्थ जाते ना, केवल भाई जाते हैं ना, इतनी सफलता नहीं मिलती है। परंतु कोई बहन साथ में जाती है, वो बहन वो शुभ भावना से, प्यार से, उस रूप से कहेगी तो वो व्यक्ति पिघल जाता है। खाली भाई लोग जाएंगे तो शायद वो कार्य न भी करे, पर बहनों को साथ ले जाना, इसीलिए बाबा ने हमेशा बहनों को आगे रखा। ये बहुत हमारे भाई बहने ध्यान देते हैं। हाँ, अकेले भाई लोग नहीं जाएंगे, आप कोई बहन को जरूर साथ ले जाएंगे, क्योंकि बहन को देखेंगे, बहन वो प्यार से सुनाएगी, भावना से सुनाएगी, तो तुरंत पिघल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ प्रयोग करके देखो, भावना सहित सुनाओ, ऐसे नहीं केवल दिमाग चलाओ। बाबा हमेशा कहते थे दिमाग का तीर केवल दिमाग तक चलेगा, पर दिल का तीर दिल को लगेगा, तो दिल से सुनाएंगे तो वो दिल को छुएगा। तो सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो आज का अव्यक्त इशारा 14 तारीख। कर्म करते हुए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर है। कर्म भी करो पर बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर है। सदा ये याद रखो कि हर कर्म इंद्री द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करनी है। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण का अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करना है। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना है। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देना है। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करना है। तो संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाना, यही है कर्म योगी स्टेज। कितनी परिभाषाएं बाबा ने दी है कर्म योगी स्टेज की। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।